रहे हैं कि अपने शेष जीवन को हम समय रहते हुए अच्छा बना लें। हमारा जीवन अच्छा तब बनता है जब जीवन में हमारे जिन चीजों को हम अच्छा समझते हैं वे प्रवेश करती हैं। जीवन में अच्छाइयों को हम महत्व देने लगते हैं तब हमारा जीवन अच्छा बनता है। जब हम बाह्य जगत की अपेक्षा अपने अंतर मन को निर्मल बनाने में लग जाते हैं तब हमारा जीवन अच्छा बनता है। अभी तो हम अपने बाहर के जगत को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, अपने शरीर के सौंदर्य, अपने अच्छे मकान और अपने अच्छे कपड़ों और भी बहुत सी चीजें हैं जो सब अच्छी होनी चाहिए। ठीक भी है, क्यों हम गंदे कपड़े पहने, क्यों हम अपना शरीर गंदा रखें, क्यों हम अपने गंदे घर में रहें, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये सब चीजें इतनी अच्छी मैं पसंद करता हूं तब फिर क्या मुझे अपने जीवन को भी इतना ही अच्छा नहीं बना लेना चाहिए? मैं अपने जीवन में क्यों बुराइयां पसंद करूं जब मैं अपने घर में कोई मलिनता पसंद नहीं करता, अपने वस्त्रों में मलिनता पसंद नहीं करता, तब मैं अपने जीवन में मलिनता कैसे पसंद? ऐसा यदि हम अपने जीवन में विचार कर लें तो फिर जीवन से मलिनताओं को हटाना आसान होगा। अपने व्यक्तित्व को हम इतना उज्जवल बनाएं कि हमें स्वयं भी अपने आप से संतोष हो कि हाँ सचमुच हमने अपने जीवन में जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। एक व्यक्ति एक साइकिल खरीदने साइकिल की दुकान पर जाता है और वहां से साइकिल खरीद लेता है। साइकिल वाला उसको कहता है कि एक साल की गारंटी, साइकिल में कोई टूट फूट नहीं होगी। बड़ा खुश होता है वो कि चलो अच्छा है, इतनी बढ़िया साइकिल मिल गई, साइकिल वाला गारंटी भी दे रहा है कि कोई टूट फूट नहीं होगी। लेकिन वो अभी साइकिल लेकर के कुछ दूर ही गया था और वापस लौट आया और लौट करके साइकिल वाले को साइकिल वापस करी और चार बातें सुनाई और कहा कि लोगों को बुद्धू बनाते हो, कह रहे थे कोई टूट फूट नहीं होगी, अभी 10 मिनट हुए नहीं है और इतनी टूट फूट। तो साइकिल वाला भी मुश्किल में आ गया कि मैंने तो उसको इतनी बढ़िया साइकिल दी है और ये तो कह रहा है कि टूट फूट हो गई। वो आया बाहर निकल करके और उसने साइकिल देखी, साइकिल में कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, चैन भी बिल्कुल ठीक थी, अभी तो उसके जो कवर लगे हुए थे वे भी नहीं फटे थे, सब कुछ ठीक था। तो उसने पूछा कि कहां इसमें कोई टूट फूट तो दिखाई नहीं दे रही। बोले तुमको टूट फूट दिखाई नहीं दे रही, मेरा चश्मा टूट गया और चार दांत टूट गए, कोई टूट फूट नहीं। ये हंसी आती ना, कैसा लगता है? लेकिन वो कितनी बड़ी सच्चाई कह रहा है, साइकिल में भले ही टूट फूट नहीं हो लेकिन जीवन में अगर टूट फूट हो गई तब तो फिर जीवन ही नष्ट हो गया। लेकिन हम अपने जीवन में होने वाली टूट फूट को इस तरह नहीं देख पाते हैं, अपने आसपास, अपने शरीर या कि अपने मकान, इन सब में होने वाली टूट फूट से बहुत चिंतित होते हैं। मेरे जीवन में जो निरंतर टूट फूट हो रही है, मेरे जीवन में जो निरंतर बुराइयां मेरे जीवन को मलिन करती जा रही हैं, उनकी तरफ मेरा ध्यान नहीं। हमारा ध्यान इस तरफ भी होना चाहिए। हमें कुछ बातें अपने जीवन के बारे में सोचनी चाहिए, कुछ प्रश्नों के समाधान हमें अपने जीवन में ढूंढना चाहिए। जो इंग्लिश राइटर हुए हैं टॉलस्टॉय, उन्होंने अपने जीवन में हर व्यक्ति को 6 प्रश्नों के समाधान ढूंढना चाहिए। ये बात कहीं पर मैंने पढ़ी थी। अपन थोड़ा सा विचार करें कि क्या उन 6 प्रश्नों के उत्तर अपने जीवन में हमने कभी खोजने की कोशिश की है। पहला प्रश्न है कि मैं यहां किसके लिए जीता हूं, यहां मेरे जीने से किसी का क्या बनता बिगड़ता है। यह प्रश्न क्या हमारे मन में उठता है? हम जब यहां इस संसार में इस तरह नहीं जी रहे थे तो हमारे नहीं होने से किसी का क्या बिगड़ रहा था, और आज हमारे होने से किसी का कुछ बन गया है या कि बिगड़ ही गया है? चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो, उस सब के प्रति हमारा कोई दायित्व है, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य है। मैं किसके लिए जी रहा हूं? अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, एक छोटा सा इंसेक्ट भी होगा वो भी अपना सुबह से शाम तक जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन मेरे पास तो वाणी, मन, विचार करने की सामर्थ्य, ये सब चीजें हैं। तब तो फिर मुझे ये विचार करना चाहिए कि मैं किसके लिए जी रहा हूं, मेरे जीवन से किसी को कोई लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, या कि मैं सिर्फ अपना जीवन ऐसे ही बिता दे रहा हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, मेरी वजह से सारा संसार टिका हुआ है, ऐसे किसी अहंकार वश नहीं जिए। हम तो यही सोचते हैं अधिकांश जीवन में कि शायद मेरे से ही ये परिवार चल रहा है, मेरे से ही समाज चल रहा है, मेरे बिना तो देश का कल्याण ही नहीं हो। ऐसा नहीं, ये एक सोच का ढंग अलग है। दूसरा सोच का ढंग ये है कि नहीं, मेरे रहने से मेरे परिवार को, मेरे परिवेश को, मेरे देश को कोई लाभ हुआ कि नहीं, नहीं तो फिर मेरा जीना तो व्यर्थ ही हो गया। मैं इस तरह से जीऊं जिससे कि इन सबको मेरे जीने से लाभ मिले। क्या ऐसा सोच करके अपना जीवन जीते हैं अपन? नहीं, मुझे क्या लाभ मिलेगा, सारी चिंता मुझे इस बात की रहती, पूरा जीवन अपने ही लाभ हानि के सोचने में गुजर जाता है। क्या हमारे अपने सोच का ढंग ये नहीं हो सकता कि मैं इस तरह से जीऊं जिससे कि औरों को भी मेरे जीवन से कोई दिशा मिले, कोई प्रेरणा मिले, या कि वे भी अपने जीवन को, मेरा जीवन देख करके कुछ ऊंचा उठा सके। लेकिन ऐसा विचार क्यों नहीं आता हमारे अंदर, उसका कारण क्या है? कभी कभी लगता है सुनकर के कि हाँ ऐसा हमें भी सोचना चाहिए, लेकिन बाई नेचर हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आता, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं है। हमने कभी कभी अपने बच्चों को इस तरह जीने के लिए कहा ही नहीं, किसी और का भी भला हो ऐसा जीवन जीना ये तो हम किसी को सिखाते ही नहीं, तुम्हारा किसमें भला है ये बार हम बता करके चुप रह जाते हैं। अगर दरवाजे पर एक गाय आ जाएगी तो हम ये जरूर कहेंगे कि जाओ उसे भगा के आओ, ऐसा ना हो भीतर घुस करके कुछ गड़बड़ कर दे। लेकिन कभी अपने बेटे को ये नहीं कहते कि जाओ भूखी तो नहीं है, एक रोटी खिलाओ, प्यास लगी हो तो पानी पिलाओ। नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा सोचना तो कुछ लोगों के जिम्मे है, सबके जिम्मे थोड़ी। लेकिन ये जो हमारा अपना जीवन का ढंग है, जिस तरह से हम सोच करके अपना जीवन जी रहे हैं, हमें क्या समाधान मिलता है ऐसे जीवन से? मेरे ख्याल से तो जीवन के अंत में जो इस तरह जीते हैं उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता। इस प्रश्न का समाधान तो हमें जीवन रहते हुए खोजना पड़ेगा कि सचमुच मेरे जीवन से औरों के जीवन को कुछ मिला, या कि मेरा जीवन यूं ही व्यतीत हो गया। मैं ट्रेन में चले जा रहा हूं, एक वृद्ध के बारे में मैंने पढ़ा। अपन ट्रेन में जाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि ट्रेन में जितना भी हो सके उतना उसको डैमेज कर दो। कोई उसके वायर तोड़ देता है, कोई उसका बल्ब निकाल लेता है, कोई उसमें और अगर सीट ही है तो सीट को ही फाड़ देगा बैठे बैठे। इससे क्या मालूम पड़ता है, मेरे अपने जीवन जीने का ढंग मैंने क्या चुना है। मैं सिर्फ अपना लाभ देखता हूं या कि मैं सबका लाभ देख करके अपना जीवन जीता हूं। एक वृद्ध पुरुष चले जा रहे हैं, एक नव युवक को वो देखते हैं कि जूते पहने हैं, उतारे भी नहीं है, और सीट पर दोनों पैर ऐसे रख करके और बैठ गया है, और उसके पैर इतने जूतों में इतना कचरा लगा हुआ है कि सीट गंदी हो रही है। घर में अगर कोई ऐसा बैठता तो टोका जा सकता था, लेकिन रेल में बैठने वाले को कोई कैसे टोक सकता है। लेकिन उन बुजुर्गवार ने धीरे से अपने थैले में से एक कागज निकाला, पेपर, न्यूज़पेपर पुराना वाला, और हाथ जोड़ के उससे कहा कि थोड़े पैर ऊपर उठाना बेटे। उसने कहा क्यों, उठाओ थोड़ा पैर ऊपर। पैर ऊपर उठा करके उसके, और सीट पहुंच करके फिर पेपर बिछा के, अब रख लो इसके ऊपर, कोई हर्जा नहीं, रखो सीट पर पैर, लेकिन ये सावधानी रखें कि ये सीट हमारी अपनी सुविधा के लिए हमें मुहैया की गई है, मिसयूज करने के लिए नहीं। क्या ऐसा कोई विचार अपने भीतर है? अगर कहीं कोई ट्रेन में कचरा फेंक देता है तो वो बुजुर्ग बार उस केले के खाए हुए छिलके को उठाकर अपने पॉकेट में रख लेते हैं, लोग हंसते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। वो कहते नहीं, यहां गंदगी फैलेगी, हम ही को दिक्कत होगी, जहां कभी डस्टबिन जहां मिलेगी वहां मैं डाल लूंगा, अभी तो अपने पॉकेट में ही रखे रहता, नीचे नहीं फेंकू। बहुत छोटी बातें कह रहा हूं ना, बहुत सांसारिक सी बातें कह रहा हूं, अभी तो इन बातों में भी परफेक्शन नहीं है, और बातों में क्या आएगा। अभी तो मंदिर में जब जाते हैं तो हाथ में चावल रहते हैं, लेकिन कितने भगवान के चरणों में चढ़ते हैं और कितने जमीन पे गिरते हैं, इस बात का ख्याल आता है कभी? भगवान को चढ़ाने पुंज लाए हूं, एक भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए, एक भी उसका अभिनय होगा, वो पैरों के नीचे आएगा। लेकिन मैं रोज देखता हूं कि मंदिर में जितने शायद भगवान के सामने नहीं चढ़े रहते होंगे, उतने तो नीचे पड़े रहते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि अभी हमारी मानसिक तक है, हम कितना वेस्ट करते हैं। उतने अगर दाने समेट करके एक मुट्ठी और एक एक मुट्ठी चार लोगों को दिए होते, दिन भर का उनका भोजन होता। लेकिन कभी अपना जीवन ऐसा जीने का हमने सोचा? बस हमारे लिए सुविधाएं मुहैया हो जाए, दूसरे का शोषण करने पड़े, दूसरे का जो भी बिगाड़ हो जाए, मेरा जीवन ठीक चलना चाहिए, ऐसे वाले सोच को लेकर के अपना जीवन अगर अच्छा बनाने चले हैं तो कृपा करके एक बार फिर से विचार कर लें। ऐसे तो हम अपना जीवन अच्छा ना बना पाएंगे। ऐसे तो हम कितनी भी धार्मिक क्रियाएं दोहरा लें, हम बार बार कहता हूं मैं इस चीज को जब से आया हूं तब से, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इन दिनों धार्मिक क्रियाएं दोहराने का एक ट्रेडिशन चल पड़ा है तेजी के साथ, और उसी को हमने मान लिया है कि हम सब धर्मात्मा हो गए। मंदिरों में दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ गई है, प्रभावना अकेले दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ गई है, या कि वास्तव में जिनके जीवन में उस दर्शन से कोई लाभ होना शुरू हो गया है उनकी संख्या बढ़ गई, इस पर विचार करना होगा। उस दर्शन से मेरे जीवन में अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो उस जीवन को मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। यह समाधान अपने जीवन में इस प्रश्न का खुद ढूंढना पड़ेगा कि मैं अपना जीवन किसके लिए जी रहा हूं, मेरे जीवन से किस किस को क्षति पहुंच रही है, किसी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन है मामला, लेकिन धैर्य पूर्वक सुन लें, पता नहीं अगले बार अपन बैठेंगे और बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, हाँ कहां नहीं जा सकता। अनसर्टेनिटी इज सर्टेन, अनिश्चितता ही निश्चित है। दूसरा प्रश्न कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, हमारे अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। पूरा जीवन निरुद्देश्य तो नहीं व्यतीत हो रहा है? क्या सोचते हैं आपके अपने जीवन के बारे में? कुछ नहीं सोचा मैंने अपने जीवन के बारे में, जैसा जी रहे हैं वैसा जी रहे हैं, बस ठीक है। या कि मैंने अगर सोचा भी है तो क्या सोचा है? सारी दुनिया को ठीक बनाने का सोच रहा हूं मैं, ऐसा भी मोटिव होता है कई लोगों का, सबको ठीक बनाऊं, किसको क्या करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं विचार करता हूं, पूरा जीवन इसमें व्यतीत हो जाता है।
क्योंकि आपने कहा था कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, मेरे अपने जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जहां जहां गड़बड़ी है वहां मैं सब दुरुस्त करके जाऊंगा।
अच्छा ठीक है, तो फिर गड़बड़ी यहां से शुरू करना पड़ेगी कि वहां से? गड़बड़ी तो यहीं से शुरू करना पड़ेगी, यहां से देखना शुरू करना पड़ेगा कि यहां क्या गड़बड़ी है। लेकिन ध्यान हमारा जाता है कि कहां कहां क्या गड़बड़ी है, मेरे भीतर क्या गड़बड़ी है, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे अपने जीवन को सुधारने का ना होकर सारी दुनिया को सुधारने का अगर है, और इतने ही नहीं, जो व्यक्ति सबको सुधारने की चेष्टा में है, मानिएगा वो सबके दोष देखने की भी प्रक्रिया सीख चुका है, तब तो उसे हर जगह कोई ना कोई गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। और इतना ही नहीं, अपने भीतर की गड़बड़ियों को देखना हम फिर भूल जाते हैं जब हम बाहर की गड़बड़ियां सुधारने में लग जाते हैं। फिर मेरे भीतर क्या गड़बड़ी है, इस पर मेरा ध्यान नहीं जाता। इसलिए हम अगर अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं तो सिर्फ गुणग्राहिता अपना लक्ष्य बनाएं, बाहर मुझे जो भी गुणवत्ता है वो देखनी है, और मेरे भीतर जो अवगुण है मुझे उनको धीरे धीरे देख करके अलग करते चले जाना है। मैं दूसरे के अवगुण देखकर उन्हें दूर करने के लिए जितना लालायित होता हूं, काश उतना ही अपने अवगुण देखकर उन्हें दूर करने के लिए लालायित हूं, और जितने अपने गुण देखने की मेरी इच्छा होती और दूसरे को बताने की, अगर ऐसा ही दूसरे के गुण देखकर उनको चार लोगों को बताने की मेरी इच्छा हो जाए, तो ये जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो मेरे जीवन को ऊंचा उठाएगा। इतना सा ही काम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते समय यदि हम तय कर लें, मैं तो अपने जीवन में हमेशा दूसरे के गुणों की प्रशंसा करूंगा, कहीं कोई एक गुण भी होगा तो मैं उसे बहुत अधिक एलोबरेट करूंगा, बहुत फैलाऊंगा, और अगर 100 दोष भी होंगे तब भी उन्हें इग्नोर करूंगा, अनदेखा करूंगा। लेकिन हम लोगों के साथ तो ये है कि किसी का एक दोष भी हो तो इतना फैला के देखते हैं कि उसके नीचे उसके सारे गुण छिप जाएं। होना तो ये चाहिए था कि किसी का एक गुण भी हो तो उस एक गुण को इतना फैलाएं जिसमें कि दोष फिर दिखाई ही ना पड़े। जीवन का अगर इतना सुंदर उद्देश्य है, कहीं मैं पढ़ता था कि जो किसी और को अच्छा कहता है उससे ये तय हो जाता है कि वो स्वयं बहुत अच्छा है, और जो दूसरे को बुरा कहता है उससे दूसरा बुरा हो या ना बुरा हो ये तो तय हो गया कि वो स्वयं भला आदमी नहीं है। दूसरे को बुरा कहने वाला भला आदमी हो कैसे सकता है? और हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत भला हो, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो, तब फिर हमें अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित तो करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में गुणवत्ता को देखने की दृष्टि मुझे मिले, और मैं देखूं अगर कभी दोष तो सिर्फ अपने ही देखूं, ऐसा ना हो कि स्वदोषे निमीलिना, दूसरे के दोष देखने के लिए तो मैं खुर्दबीन का उपयोग करूं, माइक्रोस्कोप का उपयोग करूं, और अपने दोष देखने के लिए स्वदोषे निमीलिना। जैसे कि हाथी का इतना बड़ा शरीर होता लेकिन आंखें कितनी सी होती, छोटी, और वो मिचमिचाती रहती है, कुंती बंद होती रहती, ऐसे ही स्वदोषे निमीलिना, अध खुली जैसे हाथी की आंखें अपने आप को नहीं देख पाती हैं, ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अपने जीवन में अपने दोषों को ना देख पाता हूं और मुझे सारी दुनिया दोष युक्त नजर आती हो। अगर ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है, अगर मैं अपने लिए अमृत खोजने नहीं निकलने की दृष्टि पा पाया हूं, तो कृपा करके संसार भर के लिए विष खोजने ना निकलूं, कम से कम ये मेरे जीवन में मैं सावधानी रखूं। लेकिन अगर गौर से देखें तो हम कर तो यही रहे हैं, अपने लिए अमृत की खोज में निकलने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, दूसरे के जीवन में विष घोलने के लिए निकलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अपने जीवन में भी हम झांक के देखेंगे तो हम शायद यही पाएंगे कि हमारे संस्कारों में यही चीज है, हमें अपने संस्कार को तोड़ना चाहिए हमें अगर अपने जीवन को वाकई अच्छा बनाना है। दूसरे प्रश्न का समाधान बहुत आसानी से हम अपने भीतर खोजें
और देखें, एनालाइज करें अपने आप को कि मैंने कितनी गुणवत्ता देखने की दृष्टि अपने भीतर डेवलप की है, या कि अभी भी मैं सिर्फ जहां कुछ गड़बड़ दिखता है वो ही देखता हूं, जहां कुछ अच्छा है वो मैं मिस कर देता हूं, देख ही नहीं पाता हूं और ना ही उससे कोई प्रेरणा ले पाता हूं। असल में दोष देखने से बड़ा संतोष मिलता है, अपने निर्दोष होने का धोखा हो जाता है। दोष देखने की प्रवृत्ति, ये जो निंदा में रस है वो दसवां वाला रस है। हां, ये नौ रस जो साहित्य के हैं उससे बिल्कुल अलग है, ये बड़ा मजा आता है, बड़ा बड़ा सांत्वना मिलती है कि अगर कोई किसी की निंदा करे तो फौरन हम कहेंगे हां वो तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई किसी की प्रशंसा करे अभी आपको मालूम नहीं है, अभी थोड़ा और रहो साथ में फिर पता लगेगा कि कैसे हैं वो, अभी कह रहे हैं तुम्हें अच्छा लग रहा है बाहर बाहर देखा इसलिए। ये जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति हमारे जीवन को ही बुरे रास्ते पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है, किसी और का इससे बुरा नहीं होता, हमारे अपने जीवन का बुरा होता है। और इतना ही नहीं, अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और गुणवत्ता ग्रहण करना मेरा लक्ष्य है अगर, तब फिर तीसरा प्रश्न मुझे अपने आप से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मैं जिस तरह जी रहा हूं उसका कारण क्या है। मैं वर्तमान में अगर भले प्रकार से जी रहा हूं तो उसका कोई कारण होगा, मैं अगर ठीक से नहीं जी पा रहा हूं तो उसका भी कोई कारण होगा। मेरे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद मुझे यह देखना पड़ेगा कि मेरी मौजूदा स्थिति क्या है, मैं जिस तरह से जी रहा हूं उसका कारण क्या है, उसके लिए मैं किसको दोषी मानता हूं। वरना कल के दिन हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी और ये देखेंगे कि मैं चाहता तो हूं कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे सर्कमस्टेंसेस ही बहुत एडवर्स हैं, बहुत अपोजिट सिचुएशंस मेरे चारों तरफ दिखाई पड़ती हैं, मैं ऐसे में अपने लक्ष्य की पूर्ति कैसे कर पाऊंगा। मेरा जीवन तो, मैं इस फैमिली में पैदा हुआ ना इसलिए अच्छा बन ही नहीं सकता, यहां तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है। मैं किसी और परिवार में पैदा हुआ होता तो शायद अच्छा होता, मैं किसी और शहर में पैदा हुआ होता, मैं किसी और देश में पैदा हुआ होता तो शायद बेहतर रहता। अगर इस तरह हम अपने मौजूदा स्थिति के बारे में एनालाइज करेंगे तो हम अपने लक्ष्य की कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए तीसरे प्रश्न का समाधान भी खोजना पड़ेगा कि मेरी अपनी प्रेजेंट लाइफ का कॉज क्या है, मैं अगर अच्छा हूं तो कारण क्या है, मैं अगर बुरा हूं तो उसका कारण क्या है, और वो कारण कहीं बाहर नहीं है, ना मुझे बाहर उस कारण को खोजना चाहिए, वो कारण मेरे ही भीतर विद्यमान है। अगर मुझे अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ विचार मिले हैं तो मैंने अपने जीवन में कुछ पहले अच्छा किया होगा जिसकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। और अगर आज मैं बहुत बुरी स्थिति में जी रहा हूं तो उसके लिए भी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा ना हो कि हम ये उलाहना देते हुए और पाए जाएं कि भैया अब आजकल तो बड़े बड़े लोगों की पूंछ है, हमें कौन पूछता है, हम तो गरीब हैं इसलिए हमें कोई क्यों पूछेगा। ये भाव नहीं आना चाहिए अपने भीतर, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहलाती है। हां, इसका नाम है आप जैसे हैं, आप अगर दरिद्र हैं तो आपकी दरिद्रता के लिए संसार जिम्मेदार नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी। आप अगर जीवन में दुख उठा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेजेंट लाइफ हम जिस तरह से जी रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, हमारे अपने कर्म हैं। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, हम तो अपने आसपास के परिवेश को ही दोषी ठहराते हैं, जैसा जीवन हमें मिला है उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने ही नहीं चाहते। हां, अगर जीवन में कुछ अच्छाइयां मिली हैं तो वो अच्छाइयां तो मेरा अपना ओन एफर्ट है, वो तो मेरा अपना स्वयं का प्रयास है, और वो जो मेरे भीतर गड़बड़ियां हैं वो सब परिवेश से आई हुई हैं, वो क्या करें। आपको नहीं मालूम, एक ही पिता के दो बेटे थे और पिता जिंदगी भर शराब पीते रहे और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो गए। दोनों बेटों में से जो बड़ा वाला बेटा था वो भी इसी आदत से लाचार था। लोगों ने कहा कि आपने अपना जीवन ऐसा कैसे बना लिया? तो उसने कहा, वाह, आपको परिचय नहीं है शायद मेरा, ये तो मेरी परंपरा में है, मेरे पिता शराब पीते थे, मैं पीता हूं। दूसरे वाले बेटे को देखा तो दूसरा वाला बेटा तो शराब छूता भी नहीं है, वो तो उस तरफ देखता भी नहीं है। आपने ये जीवन ऐसा कैसे सीखा? तो उसने कहा, आपने पिता से सीखा। अरे, आपके पिता के बारे में तो मैंने सुना है कि शराब पीते हैं। बोले, हाँ ठीक सुना है आपने, आपके पिता से तो आपके बड़े भाई ने सीखा है शराब पीना, और आपने ये कैसे सीखा? बोले, ये भी मैंने पिता से ही सीखा कि उन्होंने शराब पीकर के अपना पूरा जीवन बर्बाद किया और हम लोगों को कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए मैंने सीखा कि अपने को अब शराब नहीं पीना। उसने भी अपने पिता से यही सीखा। हम परिस्थितियों से क्या सीखते हैं, परिस्थितियां हमें नहीं सिखाती। हम जो सीखना चाहें वो सीख सकते हैं। अगर हम पर विपत्ति आती है, हमारे जीवन में दुख आते हैं, तो वे दुख हमें शिक्षा दें कि आगे से हम अपने लिए दुखों का इंतजाम नहीं करेंगे, क्योंकि इन दुखों का जो मेरे ऊपर आए हैं उनका इंतजाम मैंने खुद अपने लिए किया था, किसी और ने नहीं किया। अगर मुझे दरिद्रता मिली है तो इस दरिद्रता का मैंने अपने लिए इंतजाम खुद किया था। अगर मेरा मन धर्म में नहीं लगता है तो इस चीज की जिम्मेदारी मेरी खुद है। अगर मेरा मन दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। जो यहां जिस तरह से मैं अपना जीवन जी रहा हूं, प्रेजेंट लाइफ मेरी, उसका कारण कहीं बाहर नहीं है, मेरे भीतर है। ये स्वीकार कर ले, अगर अपने दुख की जिम्मेदारी खुद ले ले बिना, तो आधे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन अपने दुख के लिए तो हम दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं ना, और जब हम दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं तो हम दूसरे को ठीक करना चाहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे घर के लोग जरा ठीक से रहने लगे ना तो घर में बड़ी शांति हो जाएगी, लेकिन मैं जरा घर में ठीक रहने लगूं तो घर में बिल्कुल शांति हो जाएगी, ये कभी ध्यान नहीं जाता। बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले कि मेरे ठीक होने से परिवेश ठीक होगा, और अगर मैं गलत हूं तो उस गलत होने का जिम्मेदार मैं ही हूं, मेरा परिवेश नहीं है, तो शायद एक अच्छा समाधान अपने जीवन को हम प्राप्त कर पाएंगे। और व्हाट इज द नॉलेज ऑफ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द नॉलेज ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट? मेरे जीवन में पुण्य और पाप की जानकारी हासिल करने का लाभ क्या मिला है? मैं जानता हूं कि ये गलत है और ये सही है, इस तरह की जानकारी मैंने हासिल की है, तो उसका मुझे मेरे जीवन में लाभ क्या है? सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस में पाप है किस में पुण्य है, किसी से भी पूछ लो, 12 बजे रात को अचानक जगा करके पूछ लो, मेरे जीवन में मुझे लाभ क्या मिला? एक वो व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता कि किसमें भला है किसमें बुरा है, वो भी अपना जीवन जी रहा और मैं भी ठीक वैसा ही जी रहा हूं। मैं जिस चीज को बुरा मानता हूं अगर उसको कर रहा हूं तो फिर उसको बुरा कहां माना मैंने? अगर मेरे हाथ में कोई गर्म चीज आ जाती है तो मैं किसी से नहीं पूछता कि इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो उसे फौरन छोड़ देता हूं। ऐसे ही जिन चीजों को मैं अपने जीवन को गंदा बनाने वाला मानता हूं, उस मेरी जानकारी का मेरे जीवन में लाभ क्या हुआ? और जिस चीज को मैं अच्छा मानता हूं उस चीज को अगर मैंने अडॉप्ट नहीं किया, उस चीज को करना शुरू नहीं किया, तो उस अच्छे की जानकारी का मेरे जीवन में लाभ क्या हुआ? ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि एक सेठ जी के घर में और चोर घुस गए तो उनकी जीवन साथी ने कहा कि लगता है चोर घुसे हैं। तुमने कहा, आई नो वेल, जब अमीर आदमी हूं तो चोर तो घुसेंगे, सो चुपचाप, इसमें क्या, मैं तो जानता हूं कि घुसे ही होंगे वो। तो अब बताइए आप, क्या कहेंगे, हंसेंगे? और थोड़ी देर में खटरपटर की आवाज आने लगी तो जीवन साथी ने कहा कि सुनो, लगता है वो ताले तोड़ करके और चोरी भी करना शुरू कर रहे हैं। तो बोले, बुद्धू हो तुम, इतना भी नहीं समझती, मैं सब जानता हूं, जब घुसे हैं तो क्या चुराएंगे नहीं कुछ? बाहरी जानकारी, आई नो वेल, मुझे सब मालूम है, वे चोर कर क्या सकते हैं, जब आए हैं तो चोरी ही करेंगे। और जब उनने पोटली बांध ली तो जीवन साथी ने फिर धीरे से कहा कि लगता है कि उनने बांध लिया। तो बोले, तुम इतनी एक्साइट क्यों हो रही हो? इतना तो मुझे ही मालूम है कि जब मेरे पास माल है तब मेरे घर घुसे हैं, और जब उनको मिल गया होगा तो उनने उसको कनेक्ट भी किया होगा, कनेक्ट करके पोटली बांध ली, तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज है, इसमें और क्या। और जब उन्होंने पोटली उठा करके और जाने शुरू कर दिया तो जीवन साथी ने अब की बार जोर से जगाया, कहते सुनो तो आप सो रहे हो, वो ले जा रहे हैं। बोले, बुद्धू जब इतनी मेहनत करिए तो ले नहीं जाएंगे क्या, बांध के ही छोड़ जाएंगे क्या? आई नो वेल, मैं जानता हूं। कैसा लग रहा है ना कि कैसा है वो सेठ? और अपने बारे में भी यही कि आप तो जानते थे कि इसमें जीवन पतित होगा। हाँ, मैं तो जानता हूं कि इसमें जीवन पतित होगा, और हो रहा है लगातार। अब किसको जवाब देंगे, किसको? यही कहेंगे कि मैं तो जानता हूं। नहीं, फिर जीवन के अंत में यह कहना पड़ेगा कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद भी ऐसा हो गया, मैं जानता था फिर भी ऐसा हो गया। और दूसरे दिन जब सब लुट चुका है तब सेठ जी जाग करके बाहर हाय तोबा मचा रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि मैं लुट गया। और रात जब नींद में बार बार उनको जगा करके उनकी जीवन साथी कह रही थी, तब तो उनका ज्ञान ही उनके ऊपर हावी था और कह रहे थे कि मुझे सब मालूम। तो अगर सब मालूम है तो फिर जीवन के लुट जाने पर इतना व्यथित क्यों होते? अगर ये मालूम है कि मेरे अपने दुष्कर्मों से मेरा जीवन पतित होगा, और मैंने अगर वैसे कर्म किए हैं और मेरा जीवन पतित हुआ है, तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता? फिर दूसरे के पास जाकर के और दीनहीन होकर के और भगवान के सामने प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है कि प्रभु पतित पावन और मैं अपावन? फिर ये दोहरा मामला क्यों? मैंने अपनी अशांति के खुद उपाय किए हैं, मैंने अपने जीवन में सब जान बूझ करके और अपने जीवन को पतित करने का उपाय किया है, तो किसके सामने जाकर के मर्सी अपील करेंगे? किसके सामने जाकर के दया की भीख मांगेंगे कि अब मेरे जीवन को ठीक कर दो? कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते थे एक अज्ञानी से अगर कोई गलती होती है तो हम क्षमा कर भी देते हैं कि जाओ तुम्हें मालूम नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन हम तो सब पढ़े लिखे, हम तो सब जानकार, आज जितना अधिक हम सब जानकार हो गए हैं उतना ही हम अपने जीवन से अनजान हैं। और अपने जीवन को जिस तरह जी रहे हैं उससे तो यही लगता है कि शायद हम अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं समझते और अपने जीवन को हम जीते चले जा रहे हैं। कभी इस बारे में हम जरूर सोचें, और अगर हो सके तो कोई समाधान हम इस चीज़ का ढूंढें कि सचमुच मैंने अगर ये जान लिया है कि क्या मेरे जीवन में श्रेष्ठ है, तो मैं क्यों नहीं उस श्रेष्ठ को पाने के लिए उत्सुक हूं? क्यों मैं उसे प्रायोरिटी नहीं देता हूं? मैं क्यों अभी भी जो मेरे जीवन को पतित करने वाली चीजें हैं उन्हीं को प्रायोरिटी देता हूं? कम से कम कभी तो रुकूं, कभी तो अगर मेरे जीवन में अच्छा करने का मौका आए तो मैं उसे न चूकूं, कभी तो मेरे जीवन में अगर बुराइयों का मौका आए तो मैं कहूं कि अभी नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, शाम को कर लूंगा, झूठ अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं शाम को बोलूंगा, सच तो अभी इसी वक्त बोलूंगा। क्या ऐसा कोई डिसीजन अपने जीवन में नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। और आखिरी क्वेश्चन, नहीं अभी दो क्वेश्चन बाकी हैं, घबराए नहीं, अभी 9:35 हुए हैं, आज मेरे पास 45 मिनट है, 9:03 पे मैंने शुरू किया। हाँ, आप ध्यान रखें, मेरे पास एक ही चीज है कि मुझे अपने समय का मुझे ध्यान रहता है, मैं किसी के समय को बर्बाद करने और अपने समय को बर्बाद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, ये मेरी अपनी विशेषता है। देखा नहीं, ये मेरी विशेषता नहीं है, ये हर व्यक्ति की विशेषता है, लेकिन कोई अपनी इस चीज को भूल जाता है और कोई इस चीज को याद रखता है। विनोबा से पूछा जाता था कि आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक श्रेष्ठ बोलने वाले विचारक के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो हमेशा ये कहते थे कि जो बोलने से पहले देखता है कि कितने लोग हैं, अगर 1000 लोग हैं और मेरे पास 30 मिनट हैं, तो वो सिर्फ 30 मिनट नहीं है, हर एक के 30-30 मिनट हैं। मैं चाहूं तो 30,000 मिनट बर्बाद कर सकता हूं और 30,000 मिनट में सार्थक कर सकता हूं, तब फिर बोलना शुरू करें। ये नहीं, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। आपको अच्छी लगी रख लीजिएगा चुपचाप, किसी को खबर ही मत होने दीजिएगा कि मुझे अच्छी लगी, नहीं तो दूसरे को खबर लग जाती। अपन बात कर रहे थे कि व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। पांचवा प्रश्न जिसका समाधान मुझे ढूंढ लेना चाहिए कि मेरे अपने जीवन का मैंने क्या रास्ता चुना है, जबकि मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जबकि मैंने यह तय कर लिया है कि मुझे अब गुणवत्ता अपने जीवन में लानी है, और जब मैंने यह भी तय कर लिया है कि मेरे जीवन में जितनी मलिनताएं हैं उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और मैंने जब यह तय कर लिया है, मुझे यह मालूम पड़ गया है कि मेरे जीवन को पतित करने वाली चीजें और मेरे जीवन को अच्छी बनाने वाली चीजों का नॉलेज मुझे बेनिफिशियल होना चाहिए, मुझे उससे लाभ लेना चाहिए इस जानकारी से कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तब फिर मेरे अपने मौजूदा जीवन की स्थिति क्या है, क्या मेरे लक्ष्य की पूर्ति में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, या कि सिर्फ अकेला लक्ष्य निर्धारित करके मैं चुप बैठता हूं। ऐसा होता है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी अपने वर्तमान जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप से यह पूछना भी कि जिस दिन से मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उस दिन से मेरे जीवन में, मेरी लाइफ स्टाइल में, वे ऑफ लाइफ में कोई चेंज आया है कि नहीं। मैं सूरज की तरह सुबह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तत्पर होता हूं सुबह से कि नहीं। मैं हवाओं की तरह निस्संग होकर के यहां से वहां सहज रूप से विचरण करने की कोई प्रक्रिया अपना पाया हूं कि नहीं। ठीक ऐसे ही ये सब चीजें मुझे जिस तरह सहज जीवन जीना बिताती हैं, वैसे तो मेरा वे ऑफ लाइफ वही होना चाहिए जैसे सूरज का है, जैसे नदियों का है, जैसे कि हवाओं का है और जैसे कि वृक्षों का है। वे कभी भी, मैं अभी लिख रहा था, समुद्र अपनी सीमाओं में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है, और हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करके जीवन जीने में अपना सौभाग्य महसूस करते हैं। हम अपने जीवन में जो हमें मर्यादाएं बनानी चाहिए, हम उन मर्यादाओं को भंग करके आनंदित होते हैं कि देखा लीक लीक क्या चलना, मैं तो अपने ढंग से जीऊंगा। ये जो वे ऑफ लाइफ है वो कभी ये लक्ष्य विहीन करेगा मुझे मेरे लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी, जैसे कि नदी अपने किनारे स्वयं निर्धारित ना करे तो कहां जाएगी नदी, समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर वृक्ष अपने फल देना बंद कर दें, वो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, वे तो अपना सर्वस्व लुटाकर ही वृक्ष कहलाते हैं। नदियां अपना अनुशासन स्वयं रखती हैं, समुद्र अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करता है, क्या इनसे हम अपने जीवन को जीने की शिक्षा नहीं लेना चाहेंगे? हमारा वे ऑफ लाइफ ठीक ऐसा ही होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य को निरंतर ध्यान में रख करके अपना जीवन जीऊंगा। इसके बारे में मैं बहुत विशेष क्या कहूं। एक माँ अपने बेटे के सामने माँ रहे, एक पिता अपने पिता के सामने पिता की तरह जिए, जो जहां है वो वहां अपने उस कर्तव्य के बोध से हमेशा सजग रह करके, सावधान रह करके अपना जीवन जिए, तो वे ऑफ लाइफ अपने आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करने वाला होगा। हम भूल जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल करके अपना जीवन जीते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज, ये पांच प्रश्न तो जीवन के बारे में, और अंतिम प्रश्न, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। मेरे अपने जीवन में मृत्यु के बारे में मेरा अपना क्या सोच है? जीवन के बारे में तो मैंने सोच लिया कि मैं किसके लिए जीता हूं, मेरे जीवन से किसी को आज तक कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मेरे जीवन में गुणवत्ता प्राप्त करने का मैंने लक्ष्य बनाया कि नहीं बनाया, मेरी अपनी मौजूदा स्थिति के लिए मैंने अपने को जिम्मेदार माना कि नहीं माना, मेरे जीवन में मैंने पाप और पुण्य के बारे में बहुत जानकारी हासिल की लेकिन मैंने कभी पुण्य कर्म किए कि नहीं, कभी पाप से बचा कि नहीं, मेरे अपने जीवन को जीने का मैंने कौन सा ढंग अपनाया है, सहज और सरल जीवन जीता हूं या कि मैं अपने कर्तव्यों से च्युत होकर के अपना जीवन जीता हूं, और आखिरी चीज मेरे अपने जीवन में मरण के बारे में मेरा अपना सोच क्या है। मरण से मैं मर जाता हूं या कि मरण से सिर्फ मेरा शरीर मरता है, इन दोनों में से मैंने क्या सोच के जीवन जीना है। नहीं, मरण से तो मैंने देखा है कि मैं नहीं मरता हूं, मरण से सिर्फ मेरा शरीर मरता है, लेकिन भय तो मुझे मरण का बहुत है कि मैं मर जाऊंगा। ध्यान रखें कि वे लोग नहीं मरते हैं जो मरने से नहीं डरते हैं, मरते वे हैं जो मरने से डरते हैं। जो मरने से नहीं डरते हैं वे अपने जीवन में कुछ ऐसा कर चुकते हैं कि लोग बाप तक उन्हें याद रखते हैं, वे कभी नहीं मरते। जिसने अपने जीवन में मरण के बारे में ऐसा सोच रखा है कि मरने के बाद भी मैं ना मरूं, इसके मायने कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं जीवित बना रह सकूं, आज भी भगवान महावीर स्वामी जीवित हैं, हम सबके बीच हम महसूस करते हैं, क्यों उनकी प्रेजेंस हम फील करते हैं, क्यों उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो उन्हें जीवित रखने वाला है। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिससे कि हम बाद में ही जीवित रह पाएंगे? रहते तो हैं लोग जीवित, लेकिन किस रूप में जीवित रहते हैं? कोई उनको कभी याद करना नहीं चाहता, कभी याद आ जाती है तो ऐसा सोच करके कि क्या इनने जीवन जिया, इस व्यक्ति को याद करना भी मैं पसंद नहीं करूंगा। जीवन ऐसा जिए कि मरण के बाद भी हम जीवित रह सकें, हमें लोग अपने हृदय में जीवित रख सकें। एक जीवन जीने का ढंग, अगर मरण के बारे में ऐसा विचार है तो ये भी हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, वो एक दिन, वैसे तो अपने अपने रूम में पेंटिंग्स बनाता रहता था, कभी उसने बाहर के जगत को देखा नहीं, वो अपने आप में लीन रहता था। एक दिन वो बाहर निकला और उसने देखा कि एक व्यक्ति के दोनों हाथ नाकाम हैं, बहुत घबराया वो। उस दिन उसने पहली बार किसी व्यक्ति को दोनों हाथों से नाकाम देखा था, हाथ काम ही नहीं करते। एक व्यक्ति उसको देखने में आया कि उसके दोनों पैर खराब हैं, और एक व्यक्ति के तो उसने देखा कि उसकी दोनों आंखें नहीं है। बड़ा चकित हुआ वो, और उसने वो सारी चीजें अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। कल के दिन मेरे हाथ भी काम नहीं करेंगे तब क्या करूंगा, कल के दिन मेरे दोनों पैर भी काम नहीं करेंगे तब क्या करूंगा, कल के दिन मेरे आंखों की रोशनी चली जाएगी तब क्या करूंगा। तब उसने अपना वर्तमान में जीते हुए भी और जीना स्थगित कर दिया। मरण का स्मरण आकर के हम चाहें तो जीना स्थगित भी कर सकते हैं, और मरण का स्मरण आने पर हम चाहें तो इस तरह जी सकते हैं कि हम कभी मरे ही। लेकिन उसने तो जीते जी ये मान लिया कि अब क्या आर्ट बनाना, जिस दिन आंखें नहीं रहेंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा, जिस दिन हाथ काम नहीं करेंगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आज ही मानो उसने सोच लिया कि उसके हाथ नाकाम हो गए, पैर नाकाम हो गए हैं और आंखों की रोशनी चली गई, उसने कोई चित्र बनाना बंद कर दिया। लोग कहते कि आर्टिस्ट कलाकार अब तो तुम नए चित्र बनाती नहीं। उसने कहा क्या करना, एक दिन आंखें चली जाएंगी, एक दिन हाथ नाकाम हो जाएंगे, एक दिन पैर सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्या मतलब है। निराश हो गया वो जीवन से। लोग समझाते हैं उसको कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी आंखें चली जाएं, वो कहता नहीं नहीं मैंने देखा है किसी की भी आंखें कभी भी जा सकती। उसके गुरु तक यह खबर पहुंची, उसके गुरु आए और उन्होंने कहा कि तुमने अब नया चित्र बनाना बंद कर दिया है मैंने सुना। उसने कहा हां गुरु जी, बात क्या हुई, यही गुरु जी कि किसी भी दिन आंखें चली जाएंगी, क्या चित्र बनाना, किसी भी दिन हाथ नाकाम हो जाएंगे, क्या चित्र बनाना। गुरुजी ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। तो बड़ा चकित हुआ वो, उसने कहा लोग तो मुझे समझाते हैं कि नहीं जाएंगी आंखें, आप वाकई मेरे गुरु हैं जो कह रहे हैं हाँ किसी भी दिन जा सकती आंखें। बोले हाँ क्यों नहीं, किसी भी दिन तुम्हारी रोशनी जा सकती, किसी भी दिन तुम्हारे हाथ नाकाम हो सकते। उसने कहा मैं यही सोच रहा था और आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया, आप कितने अच्छे हैं। तो उसके गुरु ने कहा कि सुनो मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि एक दिन तुम्हारी दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसके पहले कोई ऐसा चित्र बना लो, इसके पहले कि तुम्हारे हाथ नाकाम हो जाए कोई ऐसा चित्र बना लो। उसने कहा अच्छा ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं तो ये सोच रहा था कि किस दिन रोशनी चली जाएगी तो मेरा चित्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा, किस दिन हाथ नाकाम हो जाएंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। जीवन में इससे हम इतनी ही प्रेरणा लें कि किसी दिन सांसें रुक जाएंगी तब फिर मैं क्या करूंगा, इससे पहले कि मेरी सांसें रुकें मुझे मैंने जो जीवन में चाहा है अपने जीवन को अच्छा बनाना वो मैं कर लूं, क्योंकि किसी भी क्षण हो सकता है कि आज जब मैं यहां से सीढ़ियां उतरूं और मेरी सांसें पूरी हो जाएं, हो सकता है कि मैं आज जब यहां से कहीं गुजर रहा हूं भगवान के सामने जाकर के उनको प्रणाम कर रहा हूं और हो सकता है उसी समय मेरी सांसें पूरी हो जाएं। क्या ऐसा सोच, ऐसे सोच में तो ऐसा लगता है कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो, आओ ऐसा क्यों सोच रहे हैं खराब खराब सा। अरे वाह ये खराब खराब सोच है, इसी सोच के नहीं होने की वजह से तो जीवन खराब हो गया। अगर ये मालूम रहता कि मेरी सांस किसी भी क्षण थम सकती है तो फिर मैं सांसों की कीमत करता। अभी तो मेरी कितनी सांसें व्यर्थ चली जाती हैं मुझे पता ही नहीं लगता है, फिर मैं अपनी एक एक सांस को सार्थक करने के लिए कोशिश करता, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सांसें हैं और मुझे उसमें से एक भी वेस्ट नहीं करनी। अगर ये मेरे जीवन में सोच में अगर आ जाए तो जरूर से फिर कोई मुश्किल नहीं है कि मैं अपने जीवन को अच्छा ना बना सकूं। अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस प्रक्रिया को कहानी सुनाऊं क्या? वैसे मेरा समय पूरा हो गया, अब बाकी लूंगा तो आपसे उधार लूंगा, ऐसी बेईमानी मैं बहुत करता हूं। मैं सोचता रहा था कि वो कहानी इसी समय में पूरी हो जाएगी, लेकिन पूरे 45 मिनट हो गए। अब जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा है, बोनस है। जीवन में इसी तरह है, इसी तरह हमारा जीवन हम जितना सार्थक बनाते हैं वो हमारे अपना जीवन है, और सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ क्षण और मिल जाएं तो वो क्षण हमारे जीवन के अपने बोनस के हैं। हम अपने जीवन में इसी तरह अगर विचार कर ले तो हमारा जीवन कुछ और होगा। एक घटना मुझे याद नहीं आता कि मैंने आपको सुनाई कि नहीं, द लास्ट लीफ, आप मुझे याद करके बताएं मैंने सुनाई क्या। नहीं, द मास्टरपीस शायद इस नाम से सुनाई, ये भी नहीं सुनाई है? मैं इंदौर वालों से नहीं पूछ, वो मैं इंदौर वालों से और कि मैं जयपुर वालों से नहीं पूछ रहा हूं, उनको सुनाई मैं कोटा वालों से पूछ रहा हूं। टॉलस्टॉय की तो नहीं है ये, ओ हेनरी एक बहुत बड़े इंग्लिश राइटर हैं, उनकी कहानी द लास्ट लीप या कि द मास्टर पीस। एक बहुत बड़ा कलाकार होता है, जीवन की कीमत समझना और मृत्यु आने से पहले जीवन का सदुपयोग करना, यही इस कहानी का मॉरल है। कल छोटे छोटे बच्चे हमसे कह रहे थे कि आप कहानी सुनाते हैं लेकिन कहानी का मॉरल नहीं बताते हैं आप, आज मैंने पहले से बता दिया। क्या हुआ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, उसके पास में दो बहनें कला सीखने के लिए आईं। उसमें से जो एक बहन थी वो उन वृद्ध कलाकार के साथ रह करके बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो गई। कलाकार को अपनी उस बेटी पर बहुत गौरव था कि उसने मेरे जीवन में एक काम कर दिया कि मेरी कला उसने सीख ली है। किसी भी कलाकार को सबसे बड़ा संतोष मिलता है कि वो अपनी कला को किसी और को दे करके मरे। क्या अपने जीवन में हम जो कुछ हासिल करते हैं, क्या ऐसा सोच के हासिल करते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में श्रेष्ठतम हासिल किया है वो किसी और को ट्रांसफर करके फिर मरूं? मेरे जीवन में इतनी अच्छाइयां होती नहीं है कि मैं किसी और को उनको ट्रांसफर करके फिर मरूं, ताकि संतुष्ट होकर मरूं कि मैंने अपने जीवन में भी कुछ हासिल किया और इतने ही नहीं, मैंने किसी को दे करके और शांति से अपना जीवन पूरा करूं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो जो एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट और बहुत सुंदर वो कलाकार थी, उसके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हुआ। एक दिन वो खिड़की में बैठी हुई बाहर का दृश्य देख रही थी और अचानक उसके भीतर ये विचार आया कि वो जो सामने का पेड़ है इतना सुंदर, उसमें से कितनी पत्तियां रोज झड़ती रहती हैं, ऐसा ही तो मेरा जीवन भी निरंतर झड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस दिन इस वृक्ष की सारी ये पत्तियां झड़ जाएंगी, उस दिन शायद मेरा जीवन भी पूरा हो जाए। ये विचार उसके भीतर पता नहीं कहां से गिर गया और अब वो जितने उत्साह से अपना जीवन जीती थी उतनी ही निराश हो गई। कलाकार बहुत दुखी है कि कैसे समझाएं कि ऐसा नहीं होता, कहीं वृक्ष की पत्तियों से गिरने से हमारे अपने जीवन के नष्ट होने का क्या संबंध है, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया। सब उसे समझाते हैं, लेकिन जब तक कोई खुद समझना चाहना चाहे तब तक कोई और दूसरा उसे समझा सकता है क्या? कोई किसी को नहीं समझा सकता अगर कोई स्वयं समझना नहीं चाहे, और नहीं समझा उसने तो नहीं समझा। रोज रोज उदास होती चली गई, रोज पत्तियां गिनती थी, पतझड़ का वैसे ही मौसम था, नई पत्तियां तो अभी आना शुरू नहीं हुई थी, वृक्ष में से तो निरंतर पत्तियां कम ही होती चली जा रही थी और वो रोज रोज अस्वस्थ होती चली गई। और एक दिन इतनी अस्वस्थ हो गई कि बिस्तर पर लेट गई। उसके कमरे में खिड़कियों में कर्टेन डाल दिए गए, अंधेरा सारा कमरे में, ताकि कि वो बाहर ना देखे, क्योंकि जब जब बाहर देखती थी और उस वृक्ष को देख करके उससे यही आता था कि और पत्तियां कम हो गई, मेरा जीवन और कम हो गया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सबके मना करने पर भी सबकी अनुपस्थिति में उसने उस शाम खिड़की का वो पर्दा खोलने की जिद की कि मैं आज देखना चाहती हूं कि उस वृक्ष में कितनी पत्तियां और शेष रही। उसकी उस जिद को लोगों ने पूरा किया, लेकिन उस दिन देखा कि उस वृक्ष पर सिर्फ एक पत्ती शेष है, द लास्ट लीफ। और कहते हैं कि वो लेट गई और उसने कहा कि बस ये एक पत्ती जैसे ही गिर जाएगी मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। और उस दिन रात बहुत आंधी पानी तूफान आया, आवाज आने लगी भीतर भी आंधी पानी तूफान की जो बाहर आ रहा था, इसके भीतर भी धीरे धीरे वैसी ही आंधी वैसा ही तूफान, कि अब तो वो लीफ बच ही नहीं सकती। इतनी आंधी पानी तूफान में तो हो सकता है कि कल सुबह का सूरज वो देख भी ना पाए। अब सब व्यथित हैं कि शायद आज आखिरी रात है, क्योंकि कल सुबह ये फिर जिद करेगी कि दिखाओ, तब वो पत्ती तो टूट चुकी होगी रात में। अब सबसे ज्यादा व्यथित है वो कलाकार, बूढ़ा कलाकार। उसने अपनी सारी कला इस अपनी बेटी को दे दी थी और उसने स्वयं कोई कलाकृति बनाना बंद कर दिया था। लोग कहते थे कि अब तुम कलाकृति क्यों नहीं बनाते, तो बोलता था कि एक बनाऊंगा जीवन के अंत में, द मास्टर पीस, एक कलाकृति बनाऊंगा जरूर, पर अब तो ये बनाएगी, मैंने इसको सारी कला सौंप दी है, एक बना के मैं मर जाऊंगा। अब वो सोच में है और उस दिन उसे लगा कि ये तो इसके जीवन की आखिरी रात है, अब मेरी कला का वो मास्टरपीस बनाने का शायद मौका आ गया है। और रात के अंधेरे में आधी रात को जब सब सो रहे हैं, उसने लालटेन और सीढ़ियां उठाई और बाहर निकल गया है और सारी रात चित्र बनाता रहा। सुबह हुई तो सबसे पहले उस कलाकार बेटी ने कहा कि मुझे दिखाओ उस वृक्ष में पत्ती शेष है या कि नहीं। अब सारे लोग घबरा रहे हैं कि इतनी आंधी पानी तूफान में तो वो पत्ती गिर गई होगी, लेकिन फिर भी अब ये तो इसका जीवन तो शेष रहा ही नहीं, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पर्दा खोला सब चकित हैं, वो स्वयं भी चकित है कि उस वृक्ष पर वो पत्ती ज्यों की त्यों स्थित है और बिल्कुल हिल नहीं रही है, बिल्कुल स्थिर है। अब उसका सोच बदलता है कि इतने आंधी पानी तूफान में भी ये वृक्ष की पत्ती अगर सरवाइव कर सकती है तब तो फिर मेरा जीवन भी अभी शेष है। अब ऐसा सोच करके और उसके जीवन में उसकी वीडर पावर, उसकी जीवनी शक्ति जागृत हुई और वो कहती है कि मैं मिलूंगी अपने पिता से, मिलूंगी अपने कलाकार पिता से मिलूंगी। और जैसे ही दरवाजा खोल करके और लोग उस कलाकार पिता से मिलने जाते हैं, हाथ में लालटेन और कंधे में फंसी हुई है सीढ़ियां, और वो दरवाजे के बाहर ही सिर डाले हुए हैं और पड़ा हुआ है। वो जाकर के उससे उठाती है कि उठो उठो पिता, मैं अब जीवन जीऊंगी और कलाकृतियां बनाऊंगी। लेकिन वो तो विदा ले चुका है। लोग चकित हैं कि क्या किया इसने। जाकर के देखते हैं तो उस वृक्ष के पास की दीवार पर सारी रात उसने लालटेन की रोशनी में एक पत्ती उस दीवार पर इस तरह बनाई थी कि जो दूर से देखने पर ऐसी मालूम पड़ती थी कि वृक्ष में लगी हुई पत्ती है, और वृक्ष की पत्तियां तो कब की टूट करके गिर चुकी, लेकिन वो एक वृक्ष की पत्ती लगी हुई जिससे कि देख करके उसने अपना जीवन जीना शुरू किया। क्या हमारे अपने जीवन को हमने ऐसा जिया है कि मेरी आखिरी सांस भी